मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 19 जनवरी 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी जो फरवरी में 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उनमें दाखिला लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं मनीष भंडारी जो नैनीताल से हैं, वासव जिग्नेश भाई सोम भाई आप सूरत से हैं, आशीष सैनी आप पटना से हैं, डी रवि किरण रेड्डी आप बीजापुर छत्तीसगढ़ से हैं और गौरव यादव आप फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो मनीष, वासव, आशीष, डी रवि और गौरव, आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों, इसी के साथ ही आप लोगों ने वेबसाइट पर पढ़ा होगा कि जो फरवरी की क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए एडमिशंस बंद हो चुके हैं और अब जो नेक्स्ट बैच हमारा शुरू होने जा रहा है उसकी डेट फाइनल हुई है 25 सितंबर 2016 से, जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानी यह भी 15 दिन की क्लासेस हैं। मैं डेट फिर से बता दे रहा हूं और डेट है 25 सितंबर 2016 से क्लासेस शुरू होंगी और 9 अक्टूबर 2016 को क्लासेस कंप्लीट होंगी। ये भी उसी पैटर्न पर 15 दिन की क्लासेस होंगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और इसकी जो डिटेल्स हैं अगर आपको जाननी है तो आप वेबसाइट पर चले जाएंगे तो वहां सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मित्रों, नो डाउट कि मैं सबसे पहले तो एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से फरवरी के बैच के स्टूडेंट्स को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दाखिला लिया है, कुछ सोच समझकर वो यहां आ रहे हैं, उनके आंखों में कुछ सपने हैं, कुछ वे पाना चाहते हैं और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एकेडमी अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं रखेगी, जितना संभव हो सकेगा वह आपके सपनों को साकार करने में रंग भरने की मेहनत करेगी और डेफिनेटली आप लोगों के सहयोग से यह संभव भी हो सकेगा। कम से कम हम लोगों को इस बारे में कहीं कोई शक नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट आने वाले हैं, आगे आप लोगों को सूचनाएं मिलती रहेंगी, बहुत सी सूचनाएं वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो एक मानसिक तैयारी की बात मैं जो लगातार कहता रहता हूं, आप अपने आप को खाली करके आए इसकी बात मैं लगातार कहता रहता हूं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और वक्त गुजर जाने दीजिए। मैं जो स्टूडेंट है फरवरी के बैच के, उनको विशेष रूप से संबोधित करके इन सब के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं फरवरी के बैच को पूरा करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को और आप स्टूडेंट्स के सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके पेरेंट्स जिन उम्मीदों के साथ आपको यहां भोपाल भेज रहे हैं, हम सब मिलकर उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। नो डाउट कि मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि पिछले सोमवार को जो मेरा एक आर्टिकल दैनिक भास्कर अखबार में छपा था एडिटोरियल पेज पर, जिसका शीर्षक था सपनों को सच करने का विज्ञान, उस पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं मिली और शायद उम्मीद से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली और एक आश्चर्य की बात मुझे यह लगी कि वो प्रतिक्रियाएं आज भी मुझे मिल रही हैं। तो मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि उस आर्टिकल के प्रति आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया और कई विचार भी मुझे आप लोगों के माध्यम से जानने, सोचने और समझने को मिले हैं और डेफिनेटली वे मेरे आगे के लेखों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगे, रॉ मटेरियल का भी काम करेंगे। मित्रों, आज मैं इसी को लेकर के कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि यदि मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं जो इससे रिलेटेड हैं और इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे दिमाग में कोई एक व्यक्ति नहीं है, दस व्यक्ति भी नहीं है, मेरे दिमाग में व्यक्तियों का समूह है, मेरे दिमाग में मेरे पूरे के पूरे पाठक वर्ग है। मैं यहां ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अभी खासकर जो दैनिक भास्कर में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको आधार बनाकर लाइफ मैनेजमेंट पर कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं। ये एक घटना है, मात्र एक घटना है, समस्त घटनाओं का समूह नहीं है। यानी कि इस माध्यम से आप और दूसरी भी घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। मित्रों, मेरा जो एक व्यू है खासकर लाइफ मैनेजमेंट वाले मामले को लेकर के, वो कुछ शायद मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं कोई भी बात जो आपसे कहने जा रहा हूं, अगर वो केवल एक ज्ञान बघारने की बात हो, अपने को दिखाने की बात हो, या केवल पढ़ी लिखी ही बातें हो, या दिमाग में कभी कोई फितूर आ गया और मैंने कह दिया और मैंने अपनी पीठ खुद ठोक ली, लेकिन ऐसा मुझे लगे कि उसका व्यावहारिक उपयोग संभव नहीं है, और यदि व्यावहारिक व्यवहार के तौर पर उसको इंप्लीमेंट भी किया जाए तो शायद उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, तो मुझे उससे संतोष नहीं होता है। मित्रों, मैं चाहता हूं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी बात कहूं वो ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक हो, जो उसको जिस लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाएगा उसको उस लेवल तक का लाभ मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं जब भी अपनी बातें कहने की कोशिश करता हूं, मैं जीवन से ही बातें उठाता हूं। घटनाएं भी मेरी जीवन की होती हैं, जो कुछ आप लोगों की हो सकती हैं, कुछ मेरी हो सकती हैं, कुछ सिनेमा की हो सकती हैं, कुछ अखबारों की हो सकती, कहीं भी है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो घटनाएं हैं जिन्हें मैं ले रहा हूं वो घटित हुई हों और इसी युग में और अभी ही घटित हुई हों। ये बात अलग है कि मैं अपनी उन घटनाओं के विश्लेषण के दौरान फिर मैं कभी महाभारत की बात करूंगा, कभी रामचरितमानस की बात करूंगा, कभी किसी युग की बात करूंगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि घटनाएं वो हों जो हमारे सामने घटित हो रही हैं, क्योंकि मैं जीवन को वह नहीं मानता जो मैं चाहता हूं। सच पूछे तो आपका जीवन भी वह नहीं है जो आप चाहते हैं, आपका भी जीवन वह नहीं है जो आपकी कल्पना में है। आपका जीवन, मेरा जीवन, हम सबका जीवन वह है जो घटित हो रहा है, जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसके साथ हम जूझ रहे हैं, जिसे हम जी रहे हैं या जिसे एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए क्यों नहीं उन सच की घटनाओं को लिया जाए। इसीलिए मेरी बातों को कभी भी आप अन्यथा न लें और किसी एक दो या दस लोगों के समूह तक इसे सीमित न रखें, बल्कि इसे फैलाकर देखने और समझने की कोशिश करें। जैसे मित्रों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया, मैंने बताया कि भास्कर पर जो मेरी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, आज भी मुझे प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और उनकी संख्या भी काफी कुछ है। मतलब ऐसा नहीं कि इक्के दुक्के प्रतिक्रियाएं हैं, नो डाउट कि ये मेरे लिए खुशी की बात है और मैं इसके लिए अभी तक जो प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं उनके प्रति बहुत बहुत विनम्र भाव से और पूरे मन से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे मन में कुछ उनको लेकर के है, क्यों होना चाहिए। ये तो मतलब आप लोगों का एक सद्भाव है कि एक 7-8 दिन के बाद भी वार्ड किला आपके दिमाग में है और फिर आपको लगता है कि इसके बारे में कुछ बताया जाना चाहिए। ये मेरे लिए बेहद आत्मसंतोष की बात है और मेरी खुशनसीबी भी है कि मेरे इतने प्रिय पाठक मेरे पास हैं। यहां जो मैं बात कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, लाइफ मैनेजमेंट में, वो एक इस तरह की समीक्षा की बात है कि जैसे ये आर्टिकल सोमवार को छपा, मंगलवार को मैंने आप लोगों से अपील की और आज तक मेरे पास प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ये एक घटना हुई। सामान्य तौर पर अगर प्रतिक्रियाएं कभी भी मिल सकती हैं, रामचरितमानस पर आज भी हम लिख रहे हैं, कभी भी हो सकती है, उसमें कतई कोई दो राय नहीं है, कहीं रत्ती भर भी गलत नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो, ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, रत्ती भर भी गलत नहीं है। मैं जो यहां बात कहने जा रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि अगर प्रतिक्रिया भेजनी है, इसको आप दूसरे एंगल से देखें, तो उसमें इतनी देरी क्यों? कल जो आपने ऑडियो फॉर एक्सीलेंस सुना है, जिस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे जानने को मिली हैं और इससे पहले भी मिलती रही हैं, उसमें मैंने एक फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी की बात आप लोगों से शेयर की थी और मैंने खासकर एक पहलवान जो अखाड़े में पहलवानी कर रहा और ओलंपिक का के फाइनल राउंड में पहुंच चुका है, उसकी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा अनुभव के स्तर पर जानने की कोशिश की थी। उसमें आप देखें कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनका तुरंत इंपैक्ट दिमाग पर हो रहा है, वो तुरंत उनके बारे में सोच रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, दूसरों से मिलकर के अपने स्वरूप को बदल रही है, ये सब कुछ चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो तत्काल हो रहा है, और सच पूछिए तो घटनाओं के जो असर होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो तत्काल ही होते हैं। उससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो अपने को तुरंत दिखाती है, तुरंत प्रदर्शित कर देती है। अगर हम आर्टिकल पढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है या खराब लगता है या मिडिल का लगता है, जो भी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, और यदि हम सोचते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ लिखना है, तो यहां दो तरीके होते हैं। एक तो हम तत्काल प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर देते हैं और दूसरा यह होता है कि हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं। खासकर जो बौद्धिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें यही माना जाता है कि थोड़ा सा वक्त लें ताकि हमारा दिमाग स्थिर हो जाए, क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उत्तेजित होते हैं, चाहे वो अपसाइड में हो या डाउनसाइड में हो, या तो हम उसे नकार देते हैं या हम उसे बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी मानसिकता असली में सच पूछे तो उतने बैलेंस की सिचुएशन में नहीं होती, इसलिए सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि थोड़ा सा टाइम ले लें। जैसे मान लीजिए आप किसी पर गुस्सा होना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा गुस्से को टाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए गुस्सा टाल दीजिए, फिर जब आप गुस्सा होंगे तो आप देखेंगे कि आपका बड़ा संतुलित हो चुका होगा वो गुस्सा, अब आप जो बातें कहेंगे उसका कुछ अर्थ होगा, मतलब उसमें कुछ वजन होगा। अदरवाइज तो गुस्से में आए बाएं साएं आप कुछ भी बोलने लगिए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि उत्तेजनापूर्ण मानसिकता में कही गई बात है। यही प्रतिक्रियाओं के बारे में होती है। मेरा यहां सिर्फ एक प्रश्न है मित्रों, वो आप लोगों को सोचना चाहिए और पूरी निर्ममता के साथ सोचना चाहिए, और केवल इसी मामले में नहीं बल्कि हर मामले में सोचना चाहिए, और वो ये कि वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी बाधा है, वो कौन सा रोड़ा है, कौन सा स्पीड ब्रेकर है, कौन वो फील्डिंग कर रहा है जो हमें इतने लंबा वक्त लेने के लिए मजबूर कर देता है अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने में या अपने किसी भी काम को अंजाम देने में। हु इज ही, वो कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कहना चाहूंगा और दावे के साथ कहना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति है जो हमें रोक रहा है, तुरंत काम को करने से हमें विमुख कर देता है, हमारी स्पीड को कम कर देता है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे खतरनाक आदमी है। सबसे खतरनाक आदमी है ये, जिस चीज को हम तुरंत कर सकते हैं उस पर वो इतने दिन लगाने के लिए हमें मजबूर क्यों करता है। वो इसी आप लोग जानने की कोशिश कीजिए, आप थ्रिल्ड हो जाएंगे जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको बड़ा रोमांच महसूस होगा, और अंत में घूम फिर कर आप पहुंचेंगे कि हु इज ही का आंसर होगा मी, क्यों मैं ही तो हूं, दूसरा कोई नहीं है। और जिस दिन आपको लगने लगेगा कि वो मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन मैं स्वयं हूं, तो मित्रों आपको अपने को साधने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दुश्मन कोई दूसरा हो तो उसको तो समझाने बुझाने में टाइम लग सकता है, और हो सकता है कि तब भी बात न बने, लेकिन अपने को समझाने बुझाने में कैसा टाइम लगना है, और अपने ही हित के लिए वहां तो कुछ भी नहीं होना है। और आप देखेंगे कि अचानक आपको लगेगा कि जैसे अंदर से कोई एक परिवर्तन की लहर आ गई है, और ये जो परिवर्तन की लहर है जैसे ही उठेगी आप महसूस करेंगे कि आपके एनर्जी के बहुत से चैनल्स या बहुत से ऐसे पॉइंट्स जहां वो एनर्जी दब जाती थी, वो एनर्जी रुक जाती थी, डाइवर्ट हो जाती थी, छितरा जाती थी, सारे चैनल्स ओपन हो गए हैं। आप थोड़ा सा अपने को अलग महसूस करेंगे और फिर आपको लगेगा कि अब तो मैं अगर किसी काम को तुरंत कर सकता हूं तो उसको तुरंत करूंगा ही। आप अखबार पढ़ते हैं, आपको कोई बहुत अच्छा फैक्ट मिलता है, बहुत अच्छा उसमें डेटा मिलता है, लेकिन आप ये सोच करके छोड़ देते हैं कि यार ठीक है शाम को देख लेंगे, कल देख लेंगे, दो घंटे बाद देख लेंगे, और पता लगता है कि अगले दिन सुबह आप उस अखबार को उठा करके जो पुराने अखबार हैं उनके बंडल के ऊपर रख देते हैं और फिर भूल ही जाते हैं कि उसमें कहीं कुछ था। चार पांच दिन के बाद आपको पता लगता है कि अरे उसमें तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने नोट नहीं की। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि यार वो तो नीचे दब गया होगा, अब उसको कौन ढूंढे और कहां था, कौन इतना समय खराब करे, और वो चीज आपके हाथ से निकल चुकी है, निकल जाती है, और पता लगता है कि परीक्षा में आया, और आप फिर अफसोस करते हैं काश वो तथ्य हमें मालूम होता और यहां हम लिख करके आते। मित्रों ये एक ही के बारे में बात नहीं है, ज्यादातर मामले में यही होता है। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई उस एनिमी को, उस दुश्मन को, उस शत्रु को पहचानने की दोस्तों कोशिश करें। आप लोगों को बहुत मजा आएगा कि आपको कौन देरी करवाता है, बस केवल एक ही ढूंढना है कि वो कौन है जो मुझे तत्काल का जादूगर बनने से रोक देता है। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, छोटी, हालांकि वो छोटी छोटी खबरें ही हैं, लेकिन उस पर हम बात कर सकते हैं। पहली तो जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी फ्रेंड्स, वो थी जैविक खेती के ऊपर। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने बहुत बातें कही हैं, और सिक्किम हमारे देश का पहला स्टेट है जहां 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो रहा है। दोस्तों, सच पूछे तो सिक्किम भला ही बड़े ही एक छोटा सा एक पहाड़ी स्टेट है राज्य। मैं वहां गया हुआ हूं और हम कई दिन तक, एक सप्ताह तक मैं और मेरी पत्नी वहां रहे थे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तो है ही वो, लेकिन दूसरे मामलों में भी वो बहुत खूबसूरत है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं बहुत पॉपुलर हैं अपने लोगों के बीच में, और वहां कई चीजें बड़े अच्छे तरीके से हो रही हैं। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जहां 100% शौचालय की व्यवस्था हो गई है, मतलब एक क्लीन सिटी, उसको क्लीन स्टेट घोषित किया जा चुका है। वहां एक सिस्टम बनाया गया कि सारे घर अपने यहां फूलों के गमले वगैरह लगाएंगे। आप गैंगटोक में चले जाएंगे तो आपको देखेंगे कि घरों के जो डोलियां होती हैं, जो छत होते हैं, वहां पर छोटे छोटे गमले रखे हुए होते हैं, छोटे गमले, बड़े गमले, और वो गमले फूलों से भरे होते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। फूलों की घाटी भी एक तरीके से कह लीजिए कि सिक्किम बन चुका है। तो इस तरह से बहुत से जो नेतृत्व कह लीजिए देश का, सिक्किम कर रहा है, और वहां उसने जैविक खेती में के मामले में 100% हासिल कर लिया है। वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, खासकर सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जो हमारे किसान हैं, हमारे किसानों को जब खेती के बारे में सोचते हैं तो उनको तीन एंगल से सोचना चाहिए, और तीन एंगल से सोचने का मतलब एक ही चीज है लेकिन उसके तीन कोण हैं, थ्री एंगल्स हैं, और ये तीनों मिलकर के, कंबाइंड होकर के बेसिकली एग्रीकल्चर के फील्ड में देश को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने पहली बात कही कि हमारे किसानों को सोचना चाहिए कि जो परंपरागत फसल है उनको कैसे उगाया जाए, परंपरागत फसल और परंपरागत तरीके से। सच पूछे तो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो भारत का परंपरागत तरीका ही रहा है। परंपरागत फसल का मतलब क्या है दोस्तों? एक बहुत ही सिंपल सा है कि जहां सैकड़ों सालों से वही फसल उगाई जा रही है। जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़, तो धान वहां की परंपरागत फसल है। मध्य प्रदेश में ये जो मालवा का क्षेत्र है, यहां पर कपास, चना, ये सब परंपरागत फसलों के अंतर्गत थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से, दो ढाई दशकों से, वहां सोयाबीन की खेती होने लगी। ये चीजें गायब हो गई और उसकी जगह सोयाबीन आ गया, और सोयाबीन शुरू में तो किसानों को उसने बहुत लाभ पहुंचाया, लेकिन बाद में अब वो नुकसान का सौदा दिखाई देने लगा है। तो परंपरागत कृषि के अंतर्गत चना और गेहूं और आपकी कपास था, और ये सोयाबीन आ गया। इसी तरह से अगर आप पंजाब वगैरह में चले जाए, मैंने कहीं पढ़ा था कि पंजाब में पहले इतना मक्का होता था, मक्के की रोटी, सरसों का साग अगर वहां का प्रिय भोजन है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा कि मक्का कितना होता होगा। लेकिन बाद में स्थिति यह आ गई थी कि पंजाब को अपनी ही जरूरत के लिए मक्का बाहर से मंगाना पड़ता था, वहां दूसरी तरह की कृषि होने लगी थी। तो ये इन्होंने कहा है कि परंपरागत फसल, क्योंकि भारत में जो परंपरागत फसल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भूमि की जो उर्वरता है उसको अक्षुण्ण रखने की ताकत होती है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि एक साल उस पर खेती की, इसके बाद उसको खाली छोड़ देते हैं ताकि उसकी उर्वरक शक्ति फिर से मजबूत हो जाए, और फिर नेक्स्ट बार उसको खेती करते हैं। या कह लीजिए कि एक बार उसमें मूंगफली बोया, इसके बाद दूसरी बार दूसरी फसल बोई, तीसरी बार उसमें दालें लगा दी ताकि उसकी जड़ों से जो न्यूट्रिशंस उसको मिलने चाहिए, जमीन को, मिट्टी को, वो मिल जाते हैं। तो परंपरागत फसल जो भारत की थी वो बहुत ही एक तरह से वैज्ञानिक तरीके पर तैयार की गई थी। तो उन्होंने पहली बात कही परंपरागत फसल की। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो देखें कि इस फसल के साथ साथ कैसे वो ऐसी मूल्यवान लकड़ियों का भी उत्पादन कर सकते हैं जिनकी जरूरत होती है। खेतों पे चले जाइए, वहां आप मेड़ पर पेड़ लगा सकते हैं इस तरह से कि उसकी छाया से फसल खराब ना हो, या और भी बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहां पर पेड़ लगाए जा सकते हैं और उनकी मूल्यवान लकड़ी से आय भी बढ़ेगी। नो डाउट आय तो बढ़ेगी उससे, और पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो दूसरी बात उन्होंने, दूसरा एंगल ये दिया, और तीसरा एंगल उन्होंने पशुपालन का दिया, एनिमल हस्बेंड्री का। कि वैसे भी भारत में शुरू से ही अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत दोनों ही चीजें शामिल रही हैं, खेती और पशुपालन, क्योंकि जो पशुपालन था वो खेती का ही अनिवार्य हिस्सा था। ऑर्गेनिक अगर आप खेती करते हैं तो आपको गोबर चाहिए खाद के रूप में, तो वो पशुओं से मिलेगा। अगर बकरी पालते हैं तो बकरी से भी हमें खाद मिलता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में भेड़ चराने वाले झुंड में भेड़ लेकर के आते थे, 50, 100, 200 भेड़ों का उनका झुंड होता था। फिर गांव वालों से वो मिलते थे कि रात किसके खेतों में काटी जाए, यानी कि वहां भेड़े रहेंगी, तो उसके बदले में उनको अनाज दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, तो वो अपनी भेड़ों को उन खेतों में रखते थे और फिर भेड़ों का जो मल होता था वो उन खेतों में रह जाता था, वो खाद का काम करता था। तो पशु पालन शुरू से ही खेती का एक अनिवार्य अंग रहा है। अगर आपको बैल चाहिए खेती के लिए तो वो गाय और आपको गाय पालनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से इन्होंने तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन की बात कही है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने याद दिलाया था कि फसल बीमा योजना की याद दिलाई, फिर मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के बाद चर्चा उन्होंने की। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हम लोग बातें कर ही चुके हैं, फसल बीमा योजना के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये बहुत ऐतिहासिक कदम है और इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। सिविल सर्विस के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूज में आपने ये भी सुना है कि पब्लिक स्पीक का जो विषय है वो नई फसल बीमा योजना के ऊपर ही है और इस पर मैंने आपको स्पेशल ऑडियो भी थोड़ा सा प्रोवाइड किया था, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सुने, देखें, समझें और अपने दिमाग में बसा लें, क्योंकि ये जो फसल बीमा योजना आई है ये अब लंबी रेस का घोड़ा है। ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आया है और फिर खत्म हो जाएगी ये योजना, ऐसा नहीं है। तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो दूसरी जो खबर थी, छोटी सी खबर थी, उस पर अभी बहुत सी चीजें अभी हमें अवेलेबल नहीं हुई है, वो भारत और इसराइल के संबंधों को लेकर के। आपको मालूम है कि पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब इसराइल गए थे और फिर बहुत जल्दी ही दोबारा अब हमारे विदेश मंत्री वहां गई हुई हैं और उन्होंने न्यूज में आपने देखा कि जो हमारे विदेश मंत्री का जो स्टेटमेंट है वो है कि साइबर रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच में। लगभग 80,000 भारतीय मूल के यहूदी इसराइल में रह रही हैं, ये खबर में थी। एक बात मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि इसराइल जिसके लिए बहुत फेमस है, खासकर एग्रीकल्चर के लिए इसराइल बहुत पॉपुलर है, वो ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका है और उसने टपक सिंचाई प्रणाली इतनी जबरदस्त तरीके से विकसित की है जो खासकर रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए या जहां बारिश कम होती है वहां के लिए वो बिल्कुल एक आदर्शतम स्थिति है। और भारत और इसराइल के बीच इस टपक सिंचाई प्रणाली को लेकर के बातचीत भी पहले होती रही है और काफी कुछ भारत में थोड़े से हिस्सों में शुरुआत भी की गई है, तो वो एक टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसराइल के संबंध में हो सकती है। मित्रों, एक जो फिर जो छोटी सी खबर थी, खासकर वो कच्चे तेल की कीमत को लेकर के, आप देख रहे हैं कि लगातार मैं तो हैरान हूं कि बाप रे कहां जाकर के ये कीमत रुकेगी कहां। मुझे ध्यान है $110 प्रति बैरल वाला कच्चा तेल क्रूड ऑयल अब लगभग $25-30 के करीब आ गया है और क्या होगा। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आ जाए कि वो तेल निकालने की का जो खर्चा आ रहा है वो भी तेल की कीमतों से वसूल ना हो सके। पूरी की पूरी दुनिया में एक तरह से हैरानी ही हो रही होगी कच्चे तेल को लेकर के। अब एक चीज और भी है, आप देख रहे हैं कि पेरिस सम्मेलन के बाद पूरी दुनिया पर इस बात का दबाव लगभग बढ़ने ही लगा है कि वो किस तरीके से अपने यहां तेल के उपयोग को कम करें, कोयला के उपयोग को कम करें, क्योंकि इनमें इनसे कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है और उसकी जगह पर जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको लेकर के आए, जैसे सौर ऊर्जा, विंड्स एनर्जी, वेव्स एनर्जी, इन सब के बारे में बातचीत होने लगी है। तो मित्रों, एक खतरा ये भी है सच पूछे तो, अगर वो चीजें आ गई और आएंगी ही, शुरुआत हो चुकी है और वो थोड़ी सी सस्ती होने लगी, तो ये जो हमारे पास तेल, जिन देशों के पास तेल का खजाना है और या हमारे पास जैसे कोयले का खजाना है, ये सब का सब बेकार हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हर देश फिर हड़बड़ी में आकर के लगे कि भैया जितना कोयला है जल्दी से जल्दी उपयोग कर लो नहीं तो बाद में हम नहीं कर पाएंगे, जितना तेल है उसको जल्दी से जल्दी उपयोग कर लो नहीं तो बाद में सब ये बेकार हो जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो बट नेचुरल की कोयला, तेल और इस तरह के जो भी पदार्थ होते हैं उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी और जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो रेट्स गिरेंगे ही। तो ये एक बहुत विचित्र सी स्थिति है। नो डाउट कि इससे भारत को तो बहुत बड़ा फायदा हो ही रहा है, हमारा जो राजकोषीय घाटा इससे कम हो रहा है, क्योंकि हम तेल पर तो हम लगभग 75% हमारी जो विदेशी मुद्रा थी वो तो केवल क्रूड ऑयल में ही चली जाती थी, अब हमें वहां बहुत कम खर्च करना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि विदेशी बाजार में जितना ज्यादा तेल की कीमत जितनी ज्यादा गिर रही है उसके अनुपात में हमारे यहां कंज्यूमर को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है, सरकार टैक्स बढ़ा करके तेल के मूल्य को उतना गिरने नहीं दे रही है, इसके कारण उसका राजकोषीय घाटा कम से कम कुछ संभलने की स्थिति में है। तो भारत की इकोनॉमी में अभी आपको जो एक थोड़ी सी मजबूती दिखाई दे रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं, ये फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। फ्रेंड्स, कल की न्यूज में तो लगभग इतनी ही खबर है। एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स ने जो आत्महत्या की है उसकी भी खबर थी, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। उसको लेकर के सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं लग रही है और उस पर एक एडिटोरियल कमेंट है वो मैं डाल रहा हूं, लेकिन ये जो दुर्भाग्यजनक घटना है इसमें दो तीन चीजें होती हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे बच्चों पर होने वाले दबाव, कास्ट सिस्टम, पता नहीं अब क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए जब चीजें जो जांच के बाद पता लगेंगी कि क्या कारण क्या बातें रही, ये आपके दिमाग में घटना के तौर पर एक दर्ज होनी चाहिए क्योंकि यंग हैं, स्टूडेंट्स रहा है और इन सब को लेकर के बस एक घटना के तौर पर आप अपने दिमाग में रखें। हो सकता है कि कहीं आप इस घटना का इस्तेमाल करें, लेकिन जो दुर्भाग्यजनक ऐसी घटनाएं अंदर से कहीं ना कहीं हिलाकर रख देती हैं। मित्रों, कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तो हम सब श्रोता जी, आप सब श्रोता, हम सब मिलकर के उन्हें अपनी श्रद्धांजलि ही अर्पित कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, अब जो दो दूसरी खबरें हैं जिनकी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, जो शनिवार और शनिवार की बातें हैं, शुक्रवार शनिवार इधर बीच में जो घटनाएं घटी हैं मैं केवल इशारे के तौर पर आपको बता दूं, वो दो खबरें हैं सिविल सर्विस की दृष्टि से। सबसे इंपॉर्टेंट खबर है स्टार्टअप इंडिया को लेकर के। आपको मालूम है कि 16 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कर दी है और आप देख रहे हैं कि लगातार स्टार्टअप इंडिया पर ढेर सारे आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, ढेर सारे प्रेस कमेंट्स, एडिटोरियल कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं और डेफिनेटली आते भी रहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना सरकार ने शुरू की है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप इंडिया पर भी आप अपने डायरी के, अपने रजिस्टर के कुछ पेज सुरक्षित रख लें और लगातार स्टार्टअप इंडिया पर जो कुछ भी आपको जानने, पढ़ने, समझने को मिलता है उसमें नोट करते चले जाएं और अगर कोई बेहतर क्लिपिंग्स आपको लगती है तो वो भी आप अपने पास रखें। नो डाउट कि इसके जो इसको समझने के लिए जो इसके दो तीन एंगल होंगे वो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसका मकसद क्या है, बेसिकली ये क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आप जानते हैं। दूसरा ये है इसके लिए सरकार क्या क्या बेनिफिट दे रही है, सरकार की अपनी नीतियां क्या है, ये समझ लीजिए स्टार्टअप इंडिया को लेकर। ये इसका सेकेंड एंगल हो गया। थर्ड एंगल हो गया कि भारत में अभी तक स्टार्टअप इंडिया की स्थिति क्या है, मतलब भारत कहां तक पहुंचा है, ये इसका थर्ड एंगल हो गया। फोर्थ एंगल ये हो गया कि स्टार्टअप इंडिया के लिए भारत में ये बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश हो तो किस तरह का वातावरण चाहिए, किस तरह की सिचुएशंस होनी चाहिए, एक आदर्श सिचुएशन क्या हो, ये नेक्स्ट एंगल हो गया। इसके बाद का जो एंगल होगा वो होगा कि इसमें अभी बाधाएं क्या क्या हैं, स्टार्टअप इंडिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके, बहुत अच्छे तरह से फ्लरिश हो सके तो इसके लिए अभी बाधाएं क्या क्या है। देखिए, एक तो आदर्शतम स्थितियां ये होनी चाहिए, उसमें से बहुत सी चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नहीं हैं, होनी चाहिए लेकिन नहीं है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हैं और वो बाधा का काम कर रही हैं, जैसे कि सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे कह दिया कि सरकार इससे बाहर होना चाहती है, मतलब सरकार, उन्होंने इंडायरेक्ट में ये कह दिया कि सबसे बड़ी बाधा सरकार ही है, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि साहब आपको इतने दिन में इसकी आप परमिशन मिल जाएगी और फलाना फलाना होगा और स्वप्रमाणन दिया हो जाएगा, सेल्फ आप स्वप्रमाणन के मामले में 3 साल की छूट दे दी गई इसलिए ताकि सरकार का हस्तक्षेप कम हो। तो ये बाधाएं क्या हैं, ये होनी चाहिए। इसके बाद फिर आपके ये भी होना चाहिए कि भारत के लिए ये कितना मुफीद है, भारत जिस तरह का देश है उस देश को देखते हुए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए स्टार्टअप इंडिया का रोल क्या हो सकता है। तो ये कुछ एंगल्स मैंने आपको बताए हैं और इन एंगल्स को लेकर के आपको स्टार्टअप इंडिया की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मित्रों स्टार्टअप इंडिया के बारे में थी। दैनिक अब मैं आता हूं, एक जो छोटी सी खबर थी वो ईरान के विरुद्ध, आपको मालूम है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे वो उठा लिए गए हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। इस पर भारत का, इस पर इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत और ईरान के संबंधों को लेकर के उस पर एक एडिटोरियल कमेंट है, वक्त नहीं है, वो आप लोग देख लेंगे। दोस्तों प्रेस क्लिपिंग्स के अंतर्गत मैं एक आपको अलग से क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक भास्कर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर लिबरलाइजेशन के दौर में कैसे संपत्ति कुछ अमीरों के पास लगातार इकट्ठी होती चली जा रही है और आर्थिक असमानता बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में जो एक रिपोर्ट आई है उसको लेकर के एक बहुत अच्छा आइटम है ये, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और बाकी ढेर सारी क्लिपिंग्स हैं वो अब आप लोग देख लेंगे, आप उसके बारे में चर्चा करने का वक्त मेरे पास अब फिलहाल नहीं रह गया है, और वैसे भी अब आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि उन बातों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। तो सबसे पहले तो अवनीश रंजन सरकार जो मलकानगिरी उड़ीसा से हैं, उनको मैं आप अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने उड़ीसा सिविल सर्विस का प्री क्वालिफाई कर लिया है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब लोग कि वो मेंस और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करें। और अवनीश ने लिखा है कि जो डेली आरडीओ है इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरा जो मेल है दोस्तों वो सोनू कुर्मी का है, उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है कि साल भर से वो डेली ऑडियो को सुन रहे हैं और उन्होंने क्या क्या परिवर्तन आए, पॉइंट वाइज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। सोनू कुर्मी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितने भी मेल्स हैं बहुत सारे नाम हैं, उनमें जो सोनू कुर्मी का जिस तरीके से उन्होंने अपने को एक्सप्रेस किया है उसको मैं एक बेस्ट ईमेल कहना चाहूंगा, इसके लिए सोनू कुर्मी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों बहुत से मेल हैं जिन्होंने भी लिखे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इनमें से कुछ के नाम मैं ले रहा हूं, हालांकि नाम कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा हैं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं। ओपी जाट अजमेर से, सोनिका दुबे थाने से, शैलेंद्र कुमार गया बिहार से, राजकुमार लड्ढा जी फरीदाबाद से, धवल परमार हिम्मतनगर से, दुष्यंत निमोदा सीहोर मध्य प्रदेश से, शैलेंद्र बीएचयू वाराणसी से, हंसराज तेली बूंदी राजस्थान से, विनती अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, ऋषिराज सिंह जाडेजा भुवनेश कुमार मथुरा से, आकांक्षा छतरपुर मध्य प्रदेश से, अरविंद कुमार निराला न्यू दिल्ली से, सुधा सिंह सतना मध्य प्रदेश से, दिनेश रोहतक हरियाणा से, आरती कंवर गौर केकरी से, नित्य सिंह मुगलसराय से, प्रकृति आनंद पटना से, रामू बर्मन नौगांव असम से, कुमार सुरेश मानव उदयपुर से, मनोज जाधव इंदौर से, अवतार सिंह ढिल्लन पटियाला से, ओम राज मीरा जयपुर से, अखिलेश जोयाल देहरादून से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ से, प्रेम राज अमीना इम्फाल से, करुणा मधेशिया चौराचौरी से, अतुल तिवारी बाराबंकी से, निखिल शुक्ल, संजय चौहान रुद्रपुर उत्तराखंड से, आनंद कुमार वाराणसी से, सुमित कुमार अमुंद्रा गुजरात से, अजित कुमार महतो रांची से, विभोर शर्मा दिल्ली से, वेदानंद आर्य कोपगंज उत्तर प्रदेश से, हिटलर शर्मा मेरठ से, निशा कुशवाहा इलाहाबाद से, शादाब अकबर कुरैशी न्यू दिल्ली से, प्रियंका सिंह जौनपुर से, शिवा नसीम कुरैशी न्यू दिल्ली से, गोविंद कुशवाहा अविनाश वारे मुंबई से, सौरभ कुमार सिंह इलाहाबाद से, सुदीप असारी, शिवानंद सारस्वत पीलीबंगा से, अमन अलून प्राची और विनयपाल गुड़गांव से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के डेली ऑडियो को मैं अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, मेरा बहुत प्यार भरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।